اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 5 سے آگے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے. ہم نے دیکھا کہ پیچھے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کچھ اعتراضات تھے, تو اللہ تعالیٰ کچھ دلائل اب یہاں سے آگے دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جس نبی پر تم اعتراض کر رہے ہو اور جس کتاب کو تم ماننا نہیں چاہتے, تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس کو پہچانو. کس طرح پہچانو؟ اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانو. کیا ہیں اس کی نشانیاں؟ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور, اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں, کیونکہ تاکہ تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ, نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون, وہ بیان کرتا ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں ہیں تو بہت ساری, لیکن ان پہ غور و فکر اور تدبر جو ہیں وہ علم والے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں سے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے, اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اکثر بولتے ہیں پہلی آیت, دوسری آیت, تیسری آیت, تو آیات کی مختلف اقسام اگر ہم نوٹ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ بات اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کتنی قسم کی ہیں. تو عموماً تین قسم کی نشانیاں یا آیات ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہیں. نمبر ایک, قرآن پاک کی آیات جو ہم سب کے سامنے ہیں اس وقت بھی, قرآنی آیات بولتے ہیں ان کو, 6666 ہیں. پھر دوسری قسم ہوتی ہے کائناتی نشانیاں, سورج, چاند, ستارے, پھل, پھول, درخت اور اس طرح کی ساری چیزیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی ان کو بنانے والا کوئی ہے. تیسری آیات ہوتی ہیں انفس, آیات انفس, یہ کون سی ہے؟ جو انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتی ہیں, ہم کیسے پیدا ہوئے, کہاں سے ہیں, دماغ, جگر کیسے کام کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہیں. اب پیچھے چونکہ بات ہو رہی تھی توحید کی اور شرک کی, دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں کہہ سکتے ہیں کہ شرک کی بہت بڑی ایک وجہ کیا ہوئی کہ لوگوں نے سورج اور چاند کو مخلوق سمجھنے کی بجائے خالق سمجھ لیا. آپ کو چندر بنسی اور سورج بنسی خاندانوں کا تذکرہ ملے گا. اسی طرح عرب جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا, وہاں بھی لوگ سورج اور چاند کے ساتھ بہت ساری کہانیاں اور روایتیں جوڑے رکھے ہوئے تھے. ان کو پوچھتے تھے چڑھتے سورج کے پجاری, یہ جملہ ہمارے ہاں بھی بہت عام ہے, بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں کہ کوئی چڑھتا سورج ہو یا ڈوبتا سورج ہو, پوجا تو اس کی بہرحال ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل واقعی اللہ کی طرف جھکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری عام زندگی میں نشانیاں کیا ہوتی ہیں. کبھی روڈ پہ سفر کریں تو آپ کو وہاں روڈ پہ دونوں طرف گاہے بگاہے لگے ہوئے کچھ سائن دکھیں گے, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, فلاں شہر ہے, اتنے مائل رہ گیا, آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. اس کو امیجن کریں تو یہ آیت بہت ہی اچھی سمجھ آئے گی. جو سڑک پہ روڈ سائنس لگے ہوتے ہیں, آپ لوگ شاید اس کو کیا شلت بولتے ہیں, شلت ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں؟ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں, ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہیں, سجانے کے لیے ہوتی ہیں. مقصد ہے کہ اس سے کچھ انفارمیشنس لے لو, اس سے راستہ پاؤ. اب اسی چیز کو امیجن کریں کہ کوئی شخص شارح مستقیم پہ جا رہا ہے, صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی دور کچھ نشانیاں دی ہوئی ہیں تینوں قسم کی. کبھی اس کی کائنات پہ نظر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا ہے, میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں, جس شارح پہ میں جا رہا ہوں یہ مجھے اسی کی طرف لے کے جا رہی ہے جس نے یہ کائنات بنائی. تھوڑا اور چلتے ہیں تو قرآن کی آیتیں زندگی میں آنے لگتی ہیں, یہ بھی اس قسم کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ راستہ ٹھیک جا رہا ہے. جیسے آج کل آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہر وقت یہ ضرور احساس ہوتا ہوگا کہ الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ ہیں, بس اب یہ نہ ہو کہ کہیں ہم راستے سے اتر جائیں یا راستہ بدل دیں, لیکن راستہ یہ ٹھیک ہے. یہ فیلنگ آتی ہے نا آپ کو کہ اب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے بعد اور کیا چیز رہ جائے گی کہ جس کو ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے سیکھیں. پھر اسی طرح ہم صاحب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرسنل میٹرز آتے ہیں, انفس کا का लफ्ज जैसे है। कभी एकदम कोई मरते मरते बच सकता है, बीमारी से बच गया, नुकसान होते हुए बच गया, कभी खुशी आ गई, कभी गम आया। ये सारी चीजें जो है ना हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। ठीक है, कुरानी आयतें ना भी लोग लाएं, लेकिन दो किस्म की आयतें तो हर एक को दिख रही हैं। जिंदगी में हवादिस भी हो रहे हैं, खुशियां भी हो रही हैं, और इसी तरह कायनात दिखती है। लेकिन इनसे फायदा कौन उठाता है? लिकौम यालमून, इल्म वाली कौम, जिम्मेदारी के साथ गुजरेगा वो जो समझेगा कि मुझे आगे जाना है, मेरी जिंदगी के अंदर कोई नासमझी नहीं चल सकती, मैं गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूं। मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ इन आयतों को देखकर खुश होने का नहीं कहा, ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, बल्कि इनके जरिए से मैंने मालिक को पहचानना है। अब आप देखिए कि यहाँ इस आयत में चूंकि बात हो गई कि सूरज और चांद की, सूरज के साथ आप देखिए कि सूरज का लफ्ज पहले आया और जिया का लफ्ज आया, तो जिया का लफ्ज उर्दू में भी बोलते हैं, दू से है, दुआद वाओ हमजा इसका रूट होता है, तेज रोशनी को कहते हैं, कवी और तेज रोशनी को कहते हैं। इसके बरक्स जो नूर होता है ना, ये थोड़ा सा ठंडा भी होता है और दबा हुआ होता है, यानी एकदम इसके अंदर वो जोश नहीं होता जो कि जिया के अंदर आता है। सूरज और चांद दोनों की सिफात आज हम सब अपनी आंखों से देखते हैं कि सूरज जब चमकता है तो चांद चाहे मौजूद भी हो तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, लेकिन जब सूरज चला जाता है तो फिर चांद ही एक ऐसी साइन दिखती है इस आसमान के ऊपर कि जिसकी वजह से पता चलता है कि अल्लाह की जात जो है उसने इस कायनात को बनाया। गौर करें अगर तो इसमें क्या खूबियां हैं। पहले तो आप देखिए कि सूरज और चांद ये दो इंडिकेटर्स हैं किस चीज के, कि दिन में काम करो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना गौर करो, तो हमें गौर करना चाहिए ना। इंडिकेटर है किस चीज के, कि सूरज चल गया, खुली रोशनी आ गई, जिया हो गई, उठो काम करो। सूरत नबा में भी आता है ना कि हमने तुम्हारे लिए दिन को क्या बनाया, चमकता हुआ बनाया, और रात को क्या बनाया, तुम्हारे लिए सुकून की अलामत है। चांद क्या है, किस्म का नाइट लैंप है, अल्लाह ताला मध्यम कर देते हैं, डिमर के जरिए लाइट कम कर दी कि रात तुम्हें सिर्फ सोने के लिए हल्की सी रोशनी चाहिए तो चलो रखो, लेकिन दिन में जागते रहो। कितने लोग हैं जो इस असूल पे काम करते हैं। वजालना नौमकुम सुबाता वजालना नहार माशा, इसी तरह सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं इन्ना लकफिन नहार सबहन तवीला, आपके लिए दिन में बड़े टारगेट्स हैं, बहुत काम है आपके, बहुत सारे गोल रखे हुए हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि दिन को काम करो, रात को आराम करो। दूसरी चीज जैसे समझ आती है वो क्या है कि सूरज और चांद का कोई मालिक है, अपनी मर्जी से ये नहीं आ सकते जा सकते, तो क्या ये मुमकिन है कि मेरा कोई मालिक ना हो? हाँ, अगर ये बाइख्तियार मखलूक नहीं है तो मैं कैसे बाइख्तियार हो गया? फिर इसके बाद देखिए कि सूरज भी डूबता है तो अल्लाह की तरफ जाता है। हदीस में आता है कि जब सूरज दुनिया के एक हिस्से से डूब जाता है तो वो अर्श के सामने जाकर अल्लाह के आगे सजदे में चला जाता है। इसी तरह चांद और सूरज का आखिरी जो ठिकाना है ना, वो अल्लाह की जात के पास जाके झुक जाते हैं। तो क्या मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह के आगे झुकने से दूर रख लूं? मेरी जिंदगी के अंदर क्या चीज है? फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज होती है, और वो क्या कि दोनों बामकसद हैं, बल्कि अगली भी जो चीजें आएंगी वो भी बामकसद हैं। तो क्या बेमकसद मैं रहूं? मेरी जिंदगी जो है वो सिर्फ दुनिया में खाने पीने के लिए रहे? हाँ, लोगों ने इन निशानियों से फायदा लेने के बजाय इनसे शिर्क शुरू कर दिया, और वो क्या था कि इन्होंने इनको खैर और शर का मालिक समझ लिया। चढ़ते सूरज और डूबते सूरज की बातें हुई, बच्चा पैदा हुआ तो सितारे किस सितारे में थे, सितारों की गर्दिश, आज इससे बहुत बड़ा आप देखिए कि शिर्क फैला हुआ दिखता है चारों तरफ। बच्चे की पैदाइश पे सितारा इस बुर्ज में था, अब इसलिए इसका ये चांद हो गया, ये सुंबला है, ये होत है, ये हमल है, ये बुर्ज, ये फुला है, ये फुला है, ये स्कॉर्पियन है और ये लिब्रा है, और दिस एंड दैट, और उसको पूरी बना ली। किसी नबी की तालीम में कोई ऐसी चीज नहीं। आपको नाम मिलेंगे ऐसे तो पेगन कल्चर्स में, मुशरिकाना कल्चरों में मिलेंगे, जन्म जंत्री बोलते हैं गालिबन, जायचा, नजूमी, हाथ देख के कुछ करना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सूरज और चांद के जरिए से शिर्क फैलने वाली कैफियत हैं। फिर बास लोग कहते हैं कौन सा पत्थर तुम्हें मुबारक है, कौन सा रंग तुम्हें मुबारक है, ये भी जाके सितारों की चाल से ही ढूंढते हैं। इंग्लिश में ऐसे कई लफ्ज हैं, मसलन जैसे डिजास्टर, कभी कोई तूफान या आफत आ जाए तो कहते हैं डिजास्टर आया हुआ। अगर इसको देखें तो ये दो लफ्जों का मजमा है, डिस और ऑस्टर, डिस कहते हैं खिलाफ, जैसे डिसकनेक्ट होना, कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, तो एस्टर जो होता है ये सितारे को कहते हैं, इसका मतलब यह है कि सितारे मेरे खिलाफ हैं। हाँ, इसी तरह इंग्लिश जुबान में बड़ा मारूफ जुमला कहते हैं आई थैंक माई लकी स्टार, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं अपने लकी स्टार का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी कोई उनको खैर मिले तो मुंह से ऐसी बातें बोलते हैं, तो ये कैसी चीजें हैं, ये जहालत की बातें हैं। अल्लाह कहते हैं कि मनाजिला हम कद्दरहु मनाजिला, हमने इसकी मंजिलें मुकर्रर की, कभी वो छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कभी वो एक तरफ निकल आता है कभी दूसरी तरफ निकल आता है। बस ने इससे वो 12 बुर्जों का भी जिक्र किया जो हमें मिलते हैं इनके नाते से, लेकिन इन सब से अपनी किस्मत का हाल मालूम करना या किस्मत से इधर उधर कर लेना इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कद्दरा का लफ्ज़ कदरा से है, तकदीर का लफ्ज़ भी इसी से है। इसका मतलब होता है जमाना या मकान या सिफात की एतबार से किसी चीज का अंदाजा करना, यानी जमाने के एतबार से ये काम कब होगा, हाँ, फिर इसी तरह कहाँ होगा, कितना होगा, अच्छा होगा कि बुरा, इन सारों के अंदाजे का नाम, गैस करने का नाम कदर या तकदीर है। अल्लाह ताला ने ये बयान किया। फिर आगे आप देखिए कि मनाजिल का जल्द से मंजिल की जमा है, इसका असली मानी होता है जाय नजूल, जहां बंदा रुक जाए। हम कहते हैं ना आपकी मंजिल आ गई, तो नजला यानजिलु इंजाल मुंजिल, ये सारे कह के उतरने की जगह। नुजुलन कहते हैं मेहमान नवाजी को, क्योंकि जब कोई किसी के घर आके थोड़ी देर के लिए ठहरता है तो उसके लिए ये लफ्ज आता है। तो ऐसे लगता है कि चांद एक जगह से गुजर के दूसरी जगह चला जाता है। हम सब जानते हैं कि चांद की गर्दिश की वजह से 30 या 29 दिन में चांद की मुख्तलिफ कैफियात होती हैं, तारीख बदलती है, फिर बीच में एक दिन चांद गायब हो जाता है कभी। इसी तरह सूरज जो होता है उसका पूरा दौर जो है वो एक साल का है, उससे 12 महीने और साल बनते हैं। ये सब कुछ क्या खुद ही हो रहा है, क्या इन सारी चीजों को चलाने वाला कोई पीछे है? बिल्कुल है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से अल्लाह ताला मैनेज कर रहे हैं। कद्दरहू, यहाँ एक छोटा सा अरबी लैंग्वेज का एक असलूब दिख रहा है हमें। आगे लफ्ज आ रहा है मनाजिल, मंजिल की जमा, लेकिन कद्दरहु में हु वाहिद है, हालांकि यहाँ होना चाहिए था कद्दरहुम मनाजिला, जमा है। तो इधर वाहिद के साथ जमा की बात क्यों आई? ये अरबी जुबान के मुहावरे का एक हुसन होता है। इसके लिए इधर बहुत ज्यादा आपको डिटेल ना भी बताई जाए तो इंशाल्लाह इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सब के लिए काबिले गौर चीज क्या है कि हम चीजों से मकसद हासिल करते हैं जो होना होता है कि नहीं। फिर फरमाया मा खलक अल्लाह ज़ालिक इल्ला बिलहक, ये हक है, मकसद है, वो गौर करो। सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 73 में भी यही बात हो गई थी, युफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून, वो खोल के बयान कर रहे हैं उस कौम के लिए जो इल्म हासिल करती है। अब अगली एक और निशानी का तस्कर है, इन नफ़िख्तिलाफिल लैल वन नहार, बेशक रात और दिन के आने जाने में, पीछे भी आयत गुजर चुकी, इख्तलाफ खलफा से है, एक आता है तो दूसरा जाता है, ये वो इख्तलाफात नहीं है जो हमारे लोगों के होते हैं अमूमन। हाँ, आजकल बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। इख्तलाफ का मतलब यही है कि जिस इस तरह जैसे मेरे और आप में है, आपका रुख इस दीवार की तरफ है, मेरा आपकी तरफ है, ये इख्तलाफ होता है, एक आता है एक जाता है, बिल्कुल अपोजिट के मानों में। रात आती है तो दिन चला जाता है, दिन जाती है तो रात आ जाता है, दिन अमूमन गर्म होता है, रात अमूमन ठंडी होती है, दिन लंबा होता जाएगा तो उधर से रात छोटी होती जाएगी, ये है इख्तलाफ लैल वन नहार। वमा खलक अल्लाह फिस समावाति वल अर्दी लायात लिकौमी यत्तकून, और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन में, बेशक उसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो तकवा इख्तियार करती है। अब आप देखिए कि यहाँ दो तीन बातें काबिले गौर हैं। पहली बात तो देखिए कि रात और दिन का फर्क, इसमें भी हम गौर कर सकते हैं। मसलन क्या कि हर रात के बाद जब सुबह आती है तो मेरे गमों की भी सुबह होगी। दिन होप का सिंबल है, पुर उम्मीद रहो, और रात जो है अगर मायूसी की अलामत समझी जाए तो हर गम के बाद खुशी आएगी। और अगर आज बहुत खुश हो, अल्लाह ने माल दौलत औलाद दिया, बस सब कुछ बहुत है, तो इतना फख्र ना करो, हर दिन के बाद रात भी आती है। अल्लाह ने आज अगर कोई नेमत दी है तो उसकी कदर कर लो, ऐसा ना हो कि कल वो नेमत जो है तुमसे छिन जाए। फिर इसी तरह एक और चीज पता चलती है, और वो क्या कि नेकी और बदी बराबर नहीं है, अल्लाह की खुशी और नाराजगी बराबर नहीं है। जैसे रात और दिन बराबर नहीं होते ना, एक रोशनी है तो एक अंधेरा है, ہاں تو اگر رب کو ناراض کیا تو کیا زبردستی جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ پھر دوسری چیز جو بہت ہی دلچسپ ہے ادھر کہ پچھلی آیت کے آخر میں آیت علی قومی عالمون، علم والی قوم، یہاں آ رہا علی قومی یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں. یہ قابل غور نقطہ ہے ادھر کہ جب رات اور دن کی بات ہوئی تو تقوی کی بات آ گئی، متقی ہونے کی بات آ گئی، اور جب سورج چاند کی بات ہوئی تو صرف علم کی بات تھی. اس کا فرق کیا ہے؟ آپ لوگ گیس کریں پہلے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ کیا ہم سادے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے لفظوں کی باریکیوں پہ غور کیا کہ اتنی دیر میں تو ہم چار رکوع پڑھ لیتے ہیں جتنی دیر میں ہم نے دو آیتیں نہیں کی. ہاں تو فرق ہے نا دونوں چیزوں کے اندر. جی کسی کو نہیں کچھ اندازہ ہو رہا؟ جی آپ کرن. جی یعنی انہوں نے کہا کہ پہلی چیز ہے وہ سائنس کے علم سے زیادہ دکھ سکتی ہے، لیکن رات اور دن کے اندر فرق میں کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. ٹھیک ہے اور کوئی؟ جی آپ سے. تو سورج چاند کے ساتھ علم کی بات کیوں ہے؟ جی آپ دیکھیے کہ آپ اس کو جس طرح بھی سمجھ سکیں گے آپ کو اس کی بہت سارے ڈفرینٹ اینگل سمجھ میں آئیں گے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ظاہری علم سے سمجھ آ جاتی ہیں. نالج، علم کو کہہ لیں نالج، انفارمیشنس. ٹھیک ہے سورۃ توبہ کی آخری آیتوں کو دیکھیں جو ہم نے پڑھی تھی. کچھ لوگ علم کے درجے پہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، انفارمیشنس کے نام پہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دین بھی خبر نامہ ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج رکھو، یہ خبر نامہ تھا. ہاں کچھ چیزیں خبر رکھنے تک سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک بندہ گزرتا ہے وہاں سے اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتی، دوسرا وہاں سے گزرتا ہے اس کو 10 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک بندہ اس کو کوئی گندگی نہیں دکھ رہی، دوسرا گزرتا ہے اس کو 10 چیزیں دکھتی ہیں. فرق ہے نا، تو گہری سمجھ کا فرق ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ سطحی نظر سے دیکھیں تو سائنس کھول لیں اور وہ آپ کو بتا دے گی سورج اور چاند یہ ہے اور رات اور دن اس وجہ سے بنتے ہیں. یہ تو ایک سطحی سوچ ہو گئی. جیسے آج کا بہت بڑا بدھ جو ہے یہ سائنس بھی ہے کہ جب ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ سورج جو ہے وہ رات کو ڈوب جاتا ہے تو وہ اللہ کے آگے سجدے میں چلا جاتا ہے، عرش میں، عرش کے آگے سجدے میں جاتا ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ امریکہ سے نکلتا ہے تو اتنی دیر میں جب ادھر سے چھپتا ہے تو وہ دوسری طرف ایشیا کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب سائنس کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا، سائنس کہہ رہی ہے کہ بس ادھر سے چھپ رہا ہے ادھر چھپ رہا ہے. پہلے بچے بڑے بھولپن میں پوچھا کرتے تھے کہ امی یہ چاند صبح کو کدھر جاتا ہے، تو پھر مائیں ان کو اسپرچولی اسٹوری سناتی تھیں کہ بیٹا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یہ. آپ آج کا بچہ کبھی یہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ادھر سے گیا ادھر چلا گیا، یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ آپ کسی پہاڑی کے اوپر سے گاڑی شروع کریں چلانی، چلتے چلتے جب مڈل پہ آتی ہے تو آدھی ادھر دکھتی ہے آدھی ادھر دکھتی ہے، پھر جتنا نیچے اتارتے جاتے ہیں تو پیچھے سے غائب ہو رہی ہے، ادھر پوری دکھ رہی ہے. سائنس نے تو یہ بتایا. تو کچھ حقائق سائنس سے پتہ چل جاتے ہیں لیکن ساری باتیں نہیں ملتی، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. اور ہر بات کو آپ جمع تفریق سے سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے اور عادت ڈالنی چاہیے غور و فکر کی. اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب لینا چاہتے ہیں نا تو ہر چیز پہ سوچنا شروع کر دیں، غور کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے راز آپ پہ کھلیں گے. جتنا آپ کا کنسرن زیادہ ہوتا ہے، جتنی آپ کی آبزرویشن تیز ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا، اور اس کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے. اب اگلی آیتوں میں سات اور آٹھ دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے. فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، البتہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور دنیا کی زندگی میں ہی خوش ہیں، واطمئنوا بها اور اسی کے ساتھ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. لگ رہا ہے کوئی انسان تصور میں آ رہا ہے؟ آج کے انسان کی تصویر کشی ہے، اتنے دنیا میں کھو گئے کہ کائنات پہ غور ہی نہیں ہے کرے. آپ دیکھیے کہ جو ایک جگہ پہ مطمئن ہو جائے، مثلا آپ اس گھر میں رہتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے مطمئن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرے لیے سفیشینٹ ہے، اس گھر کی چیزیں سب چیزیں میرے لیے بہت ہیں. کیا اس کے بعد آپ غور کریں گے یا سوچیں گے اس سے بڑے گھر کے لیے؟ مثال ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، आप मुतमईन है वहां हर लिहाज से, आपको कोई फिक्र नहीं। क्या आप पाकिस्तान से बाहर जाने की कोई कोशिश करेंगे या सोचेंगे? कोई तैयारी, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं करेंगे ना? बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में इतना इत्मीनान और इतनी खुशी महसूस कर लेना कि सब जो लेना है वो इधर ही लेना, जो मिलेगा यही मिलेगा, और हम इधर बड़े खुश हैं, तो नतीजा क्या होता है कि आखिरत की तैयारी ही नहीं होती। आप देखिए कि आप कहीं जाते हैं या आपकी जिंदगी में कोई दूसरा मरहला आता है तो क्या अचानक आ जाता है? तैयारी होती है ना। और छोड़ दें सिर्फ एक बच्ची की शादी, देख लें कितने महीने के, बाज़ दफ़ा साल हर साल माएँ तैयारी करती हैं, फिर बच्ची इस घर से उठ के उस घर में जाती है। तो जब एक जगह दिल लग जाता है ना, तो बंदा दूसरी जगह जाने के ख्वाब देखना भी छोड़ देता है। यहाँ भी ऐसे ही गाफिल लोगों की कहानी है कि इनको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद ही नहीं, क्योंकि दुनिया वालों की मुलाकातें बड़ी हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ के बड़े, यहाँ के फेमस लोग, उनसे ही बहुत मिलना चाहते हैं, इनको फिक्र ही नहीं। ये कहते हैं वी आर क्वाइट हैप्पी, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद आवर ओन रिलीजन, हम बहुत खुश हैं। वह रदू बिल हयात दुनिया, वो दुनिया में खुशियाँ मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, वह तमन्नू भी है और बहुत सेटिस्फाइड है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर बन गया, सोफे भी ऑर्डर कर दिए, अब डिनर सेट भी आने वाले हैं और हाउस वार्मिंग पार्टी भी हमारी अरेंज हो चुकी है, माशाल्लाह जिंदगी में कोई कमी नहीं, शादी भी थी वो भी हो गई, अब माशाल्लाह अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी भी दे दिया, वतमानु भी हा, गाड़ी कल तक छोटी थी अल्हम्दुलिल्लाह अब गाड़ी भी बड़ी आ गई, बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, मगर वह अल्लाह की आयतों से गाफिल हैं। क्या इंजाम है ऐसे लोगों का, उलाइका मावा हुमुन नार, ये वो लोग हैं जिनका मावा, जिनका ठिकाना आग है। बीमा कानू यक्सिबून, बावजह इसके कि जो वो अमल करते हैं। यहाँ बात हुई है गफलत की, तो कल का एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया, मगरिब और इशा के बाद की बात है ये, और आपको पता है कि आजकल कितनी जल्दी अंधेरा होता है, शाम को सर्दी भी कितनी होती है। तो मैं घर में थी तो बेल हुई, तो बाजी भी जो हमारे जिन लोगों के साथ होते हैं, तो उन्होंने डोर खोला। मैं ऐसी जगह पे थी किचन में काम करते हुए कि जहाँ मुझे बाहर दिख रहा था, तो मैंने देखा कि गाड़ी रुकी है और उसमें काफ़ी ओल्ड कपल, जो देखने में नॉन मतलब फॉरनर लग रहे थे, बूढ़ी औरत थी, बूढ़ा मर्द था, तो वो उतरे। तो मैंने देखा और हमने समझा कि शायद हमारे नेबर जो साथ हैं वो नॉर्वेजियन लोग हैं, तो उनके घर कोई आया है। तो जब हमारे घर का डोर बेल करने लगे तो हमें लगा कि शायद वो गलती से हमारा करने लग गए हैं, तो इनको जाना उधर है। तो बाजी गई और डोर पे गई, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी एक सेकंड या दो मिनट, दो सेकंड में वापस आ जाएंगी कि भाई ये नहीं वो डोर है, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लग गया। अब मुझे उनकी बातें ना समझ आ रही थी ना इतनी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे ये पता लगा चल रहा था कि वो लोग बैठ बात कर रहे हैं काफ़ी देर। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद बाजी अंदर आई और उनके हाथ में दो बुक्स थी, कहने लगे आपको पता है कौन था? मैं समझी कि बाजी के इतना अच्छे अखलाक देख के खड़े हो गए हैं कि जा ही नहीं रहे। कहने लगे ये देखें, ये मुझे देखे गए हैं, हाथ में उनके दो अच्छी खासी खूबसूरत बुक्स थी, बुकलेट्स थी, और वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए आए हुए थे। यकीन करें 70 से 80 के बेटे में वो कपल था, वो ड्राइव करके आए और कहती हैं कि ये हर 15 दिन के बाद आते हैं। मैंने कहा कि इस वक्त हमारे लोग तो सो रहे होंगे, और वाकई हम सो रहे हैं, ये उम्मत तो सो रही है, हम तो गर्म बिस्तरों से ना निकले और बाहर सर्दी में खड़े रहे। तो वो कहती मैंने इनको अंदर, वो उनकी बड़ी कोशिश थी कि अंदर आए, कहती लेकिन इनका मसला क्या कि एक दफा हम इनको अंदर आकर बिठा दें ये कई घंटे नहीं जाते, और ये जान नहीं छोड़ेंगे आपकी जब तक आप बात ना करें। वहां दरवाजे पे खड़े खड़े उन्होंने इतनी बातें की कि आपको तो पता है आपका प्रॉफिट मोहम्मद था, वो तो बस ऐसी इखलाकी बातें सिखाने आए थे, वो तो फौत हो गए हैं ना, लेकिन जीसस ने वापस आना, और दिस एंड दैट करके कम से कम 15 मिनट वो बाहर सर्दी में खड़े थे और खातून घर के दरवाजे के अंदर खड़ी थी। वो सिर्फ इसलिए भी नहीं लाई कि मर्द और हम घर में क्यों किसी को बुला लें, लेकिन वो कहती हैं कि वो बिल्कुल टल नहीं रहे थे। कहती आपको बताइए इस वक्त क्यों है? मैंने कहा कि नॉर्मली तो ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि रात को ना जाएं और दिन में ये लोग जाते हैं। कहती कि इन लोगों ने नंबर नोट किए होते हैं हमारे घरों के कि जहां दिन में कोई नहीं होता, तो ये इसलिए इस वक्त आते हैं कि लेडीज भी और जो भी काम करके लोग हैं वो वापस आ चुके होते हैं, सुबह में नहीं आते, या आए हों कभी तो बंद हुआ तो इन्होंने नोट किया होगा। मैंने कहा कि इनको पता है कि ये मुसलमानों का घर है? कहती इनको ये भी पता होता है लेकिन इसके बावजूद भी हर घर में भी जाते हैं, यानी जहां भी इनका मौका मिले। तो मुझे उस वक्त इतनी मेरे दिल में हूक उठी, मैंने कहा हमारी उम्मत तो सो रही होगी, कौन इस वक्त रात इतनी सर्दी में माइनस में टेम्परेचर चल रहे हो और चल पड़े कि चलो जाके किसी को कुरान की कोई बात सुना दें। खैर वो बड़ी बुक अपनी दे, कह रहा था मुझे अंदर बिठाओ मैं तुम्हें अपनी बाइबल खोल के दिखाता हूँ। और वो ऐसी थोड़ी बात करते हैं कि आप हमसे फर्क है, वो इस्लाम की पहले आयतें सीख के आए होते हैं, उसी की बेस पे तो वो बात शुरू करते हैं। उनको पता है कि अगर किसी मुसलमान ने डोर खोला और आप कह दें कि कुरान गलत है और हम सच्चे हैं तो वो तो फौरन दरवाजा बंद कर देंगे। तो असल बात क्या है कि जब मुसलमान रदूबिल हयात दुनिया हो जाते हैं, उनको इसी जिंदगी के गम, रोने इस जिंदगी के, खुशियां इस जिंदगी की, खाने इस जिंदगी के, पीने इस जिंदगी के, तो वल्लज़ीन हुम मिन आयातिना गाफिलून, वो अल्लाह की आयतों से गाफिल हैं। आज का मुसलमान गाफिल है, तीनों किस्म की आयतों से गाफिल है, कुरान से गाफिल, कायनात से गाफिल, अनफुस की आयतों से गाफिल। अल्लाह ताला गफलत के पर्दे चाक कर दे, कहेंगे ये तो बहुत ही बैड अखलाक है कि आप जाके लोगों के दरवाजे खटकाओ। और इन लोगों ने अपनी जिंदगियां डिवोट की होती हैं अल्लाह के रास्ते में, ये कितनी बदबख्ती है कि ला यरजूना लिकाना, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद ही नहीं। आप देखिए कि आपने कहीं भी जाना हो, कुछ करने की सिर्फ उम्मीद ही अगर हो जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी बंदा तैयारी शुरू कर चुका होता है। आप में से किसी को अगर सिर्फ उम्मीद हो जाए ना कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी 2 माह बाद बिलफर्ज, हालांकि आप नहीं जाएंगे कोर्स के दौरान कहीं भी, हाँ, लेकिन 3 माह पहले से लोग क्लासेस में आना छोड़ देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए कोर्स नहीं ज्वाइन करते, नहीं वो 2 माह बाद हमने पाकिस्तान जाना फिर आके शुरू करेंगे, तो अब माशाल्लाह 11 पारे हो गए अभी नहीं हुआ है वापस, कि अब मेरा इंतजार कर। कहीं जाना होता है बंदे की तैयारियां बताती हैं कि इसको जाना है, ये कोशिशें कर रहा है, और अगर नहीं है तो फिर तो बस इत्मीनान है, अल्लाह अकबर। और इत्मीनान की जिंदगी फिर क्या जिंदगी है कि जिसके बाद एक इतना बुरा अंजाम हो के उलाइका मावाहुमुन्नार, ये हैं वो लोग जिनका ठिकाना आ गया, बिमा कानू यक्सिबून, इसकी वजह से जो ये कमाइयां करते थे, जो इनके करतूत थे, जो इनकी बातें थीं, उन सब के वजह से ये सब कुछ हुआ। अब देखिए कि इंसान जब कुरान की तरफ आता है ना, तो उसके अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं, एकदम दुनिया बेबुक्कत लगती है, कोई केयर नहीं। वो चीजें जिनको आप दिल से लगा के रखते थे, यकीन करें उनको हाथ लगाने को दिल नहीं चाहता। आप कहते हैं ये 10 मिनट भी जो मेरे इसमें लगेंगे उससे बेहतर है कि मैं कोई बात पढ़ सुन लूं जिसका फायदा दूसरों को होगा, और फिर इंसान की कोशिशों का रुख बदलता है और इस तरफ जाता है। अगर आज हम देखें कि कितने लोग हैं जो अपने मुल्कों को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्कों में या वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, क्या वजह, कोशिशों का रुख उधर क्यों है, इन हिजरतों का मकसद क्या है कि जो मिले वो दुनिया में मिल जाए, इतनी आसाइशें मिले, ऐसा करें कि बस इस दुनिया के किसी कोने में जन्नत मिले। तो याद रखिए कि जन्नत इस ग्लोब पर नहीं है, आप पूरा यूनिवर्स ढूंढ फिरें, आपको साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स कोई चीज लीड नहीं कर सकती कि दुनिया में एक ऐसा सैयारा डिस्कवर हुआ है कि जो जन्नत है, अल्लाह ने उसको छुपा के रख दिया, तो उसको पाने के लिए कोशिशें करनी होंगी। वो कैसे होती हैं, उसके लिए रास्ते कब हमवार होते हैं, कहा इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे, यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम, इनका रब इनको इनके ईमान की वजह से रास्ते दिखाता है, सुभान अल्लाह, इनको किसी और से नहीं पूछना पड़ता, इनका रब खुद इनको दिखाता है, इनका ईमान इनके लिए नेविगेटर बन जाता है, इनका ईमान इनके लिए टॉम टॉम बन जाता है जो इनको लेके जाता है किस तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ, किस जन्नत की तरफ इनको गाइड करता है इनका ईमान, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, उन नेमतों वाली जन्नत में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, सुभान अल्लाह। अब देखिए कि इस आयत के अंदर जो बात है वो क्या है, यहदीहिम रब्बुहुम, उनका रब उनको रास्ता दिखाता है, अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है, किस वजह से रास्ता दिखाता है, भी ईमानिहिम, ये एक बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, अंदर ईमान आता है ना तो रब रास्ते दिखाने लग जाता है। आप कह लें कि अंदर तलब पैदा होती है ना किसी चीज की, तड़प पैदा होती है, तो नेकी के मौके दिखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, नेक आमाल के रास्ते खुलने लगते हैं, वो जिंदगी में हालात बनने लगते हैं कि उसके बाद एक बंदा हकीकत में सोच के हैरान होता है कि कल तक ये बात नहीं थी। आप में से कितने लोग इस चीज की गवाही दे सकेंगे कि जब आपने सच्चे दिल से अल्लाह की किताब को सीखने की तलब रखी, अल्लाह ने आपको कुरान से जोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है यहदीहिम रब्बुहुम बीमानिम। और पिछले कितने सालों से तलब ही नहीं थी, तड़प ही नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। आज कई लोगों को नहीं दिख रहा ये रास्ता, मेन रोड पे है, हाईवे पे है, इतने शहर के सेंटर में कई लोगों को ये दिखेगा ही नहीं। बाहर से गुजर जाएंगे, कहेंगे साइन ही नहीं दिखा, रोड नहीं दिखी। वजह क्या है? भी ईमानिहिम, तलब नहीं है, तड़प नहीं है, जहां चाह नहीं वहां राह नहीं। अल्लाह बगैर चाहत के ये चीजें नहीं देता। अल्लाह की जात जो है वो बंदे की पहले तलब देखती है, खरा खोटापन देखती है। दुनिया परस्तों के मुकाबले में ये वो गिरोह है जो दौलत ईमान से माला माल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के दामन को अमाले सालेह के रंगीन और महकते हुए फूलों से महका रखा है। ऐसे लोगों को फिर रब रास्ते दिखाता है। यहदीहिम रब्बुहुम भी ईमानिहिम, ईमान का चिराग रोशन करके कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हो जाए तो अल्लाह उसको तौफीक जरूर देता है। ये तौफीक रब्बानी है जो बंदे को मिलती है अपने ईमान की वजह से। फिर आंधियां आए, फिर तूफान उठें, फिर कुछ भी रुकावटें आए, ईमान का चिराग बुझने ही नहीं देता इस कैंडल को। कितने थपेड़े आते हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिंदगी में इस सारे रास्ते में, लेकिन वो कहते हैं अब चल पड़े तो अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। तो पहली बात क्या है? यहदीहिम भी ईमानिहिम की, कि रब उनके लिए नेकियों के रास्ते आसान कर देता है। दूसरी भी इसकी एक तफसीर है, और वो क्या है? कब्र में रहनुमाई करेगा। सही अहादीस से ये बात पता चलती है कि कब्र में तीन सवाल हर एक से पूछे जाएंगे। मन रब्बू का, मर रसूलू का, मा दीनुक, तेरा रब कौन था, तेरा रसूल कौन था, और तेरा दीन क्या था। अब हैं तो बड़े आसान, आप कहेंगे अभी रट लेते हैं, किसी पर्ची में लिख के रख लेंगे। शायद इसीलिए लोग अहदनामा डाल देते हैं कब्र में, पर्ची पे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ के दिखा देंगे, अंधेरों में तो पर्ची भी नहीं खुलेगी ना? तो वहां इतनी वहशत होगी, मुनकर और नकीर बिल्कुल दो अजनबी मखलूकात हैं। तो ऐसे वक्त में यहदीहिम रब्बुहुम बीमानिहिम, अल्लाह उन सवालों का सही जवाब सुझाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं कभी हुआ कि आपको सवाल आता था, पर्चा देखते ही खुश हुए, आप कहते सर आता है, जब करने बैठे दिमाग से चला गया, रूटवर्ड करते करते गलत कर दिया। हाँ, क्या होता है? अल्लाह नहीं दिखा रहा रास्ता भी, लेकिन जब बंदे को कब्र में सवाल जवाब पेश आएंगे, अल्लाह उसकी सारी घबराहट दूर कर देगा, उसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। इसी तरह इसका तीसरा मफहूम क्या है? कि पुल सरात पर रहनुमाई करेगा और जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएगा। करना फिर हमने, कोशिश हम करेंगे, रब रास्ते दिखाने को तैयार है। अल्लाह ताला बंदे के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। ये नहीं कि तुम रास्ता पूछो ना और अल्लाह तुम्हें बताए। देखिए, रास्ता किसको बताया जाता है? जो आपसे पूछे, कोई यहाँ नॉक करे आके और आपसे पूछे कि ये बताइए कि डॉक्टर अली का क्लिनिक किधर है, तो उसको ही बताएंगे ना। या आप में से कोई बाहर खड़ा होकर कह दे डॉक्टर अली का क्लिनिक इधर है, डॉक्टर अली का क्लिनिक इधर है, हु वाई, क्या रीजन है? बिल्कुल यही कैफियत अल्लाह की है। अल्लाह हर एक को नहीं बताता। या चलें डॉक्टर अली के क्लिनिक की मिसाल छोड़ दीजिए, आप एक प्रैक्टिकल चीज सेध में आ गई। मसला आप देखिए कि बास लोग होते हैं तो वो कहीं खड़े हैं, आपको पता कि यहाँ कुरान की क्लास होती है, तो आप बाहर खड़े हो जाएं और हर आने वाले को कहें यहाँ कुरान की क्लास से आ जाओ, यहाँ कुरान की क्लास से आ जाओ, तो बास लोग तो रुकेंगे भी नहीं। कोई सब्जी बाहर कोने की दुकान पर ले रहा है और आप उसको कहें इधर आए, इधर कुरान की क्लास होती है, तो वो कहेंगे जी जरा जल्दी करें, मुझे जाना है, बाद में बात करेंगे। आप किसको बताया करें, किसको डिटेल से बताएं जो पूछे। कभी भी दर्शों के एंड पे थोड़ा सा लोग कहते हैं कि बताएं, तो मैं थोड़ी सी बात करके फिर कहती हूँ कि जिसको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए बाहर रिसेप्शन से आके ले ले। लेकिन यहाँ मैं ऐसी खाम को बताऊँ, वो इधर है, वो उधर है, इस जगह है, यहाँ इतने वक्त में, किसी ने सुनना है, किसी ने नहीं सुनना। जिसको तलब होती है वो पहुँच जाते हैं, बाद में वो खुद खोज निकाल के ले जाते हैं। तो अल्लाह की ज़ात जो है बंदे को रास्ते दिखा देती है और फिर इस तरह से ले जाती है कि बंदे का हाल क्या होता है, कि वो जन्नत में पहुँच कर हैरान है, परेशान है। दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा, جنت کی بہاروں کو دیکھ کر ان کی صدا ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کمال کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے. یہاں منزل پہ پہنچے گا انسان، اور منزل مقصود پر پہنچنے سے جو سچی مسرت اور روحانی خوشی ہوتی ہے، اس کے اظہار کے لیے جو زبان سے لفظ نکلیں گے ان کا تذکرہ ہے. امیجن کریں ذرا، کوئی شخص بڑی لمبی ٹریولنگ کر کے واپس پہنچے گھر میں، کیا حال ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جہازوں کا سفر کر کے بھی لوگ پاکستان سے امریکہ آتے ہیں نا، تو آ کے دو دو دن سوتے ہیں، کہتے ہیں میں جیٹ لاک ہو گیا. پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن بالکل سونے کے وقت میں جاگ رہے ہیں، جاگنے کے وقت سو رہے ہیں، کھانے کے وقت الگ فکر، حالانکہ بیٹھے آئے، کوئی چلے نہیں، کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی گھوڑا نہیں ہانکا، کچھ نہیں، لیکن منزل پہ پہنچنے کے بعد ایک پیس آف مائنڈ جو آتا ہے نا، اس سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اب سوچیے ایک بندہ ساری زندگی محنتیں کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوشش کریں کوشش، کچھ کر لیں کچھ کر لیں، کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے، لیکن ابھی ایک کیا تو اگلا تیار، ایک کیا تو اگلا تیار، ایک صحیح ہوا تو دوسرا برا، ایک پروجیکٹ کی خوشخبری ملی تو دوسرے کی بری خبر ملی، ہر وقت دل پہ حملے ہی ہوتے رہے. اب کیا ہوا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں داخل ہو گیا ایمان والا، اور وہاں جا کے دیکھتا ہے اور کیا بولتا ہے، سبحانک اللہم. یہ جملہ ہم نے تو پڑھا تھا اس لیے کہ ایک ایک لفظ پہ نیکیاں ملیں گی، جہاں ایک بڑے ہی دلچسپ نقطہ بھی ہے اور آپ کا ایک کانسیپٹ بھی اسے کلیئر ہونا چاہیے. عموماً ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ وظیفہ کر لو تو اس کا اتنا ثواب، یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال، 100 دفعہ پڑھ لیں تو جنت میں ایک محل، 500 دفعہ پڑھ لیں تو بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، 1000 دفعہ پڑھیں گے تو چلے بیٹے کا بھی ہو جائے گا. ہم دنیا میں عموماً یہ کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفہ یا تسبیح کرتے ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے جزا، ریوارڈ، یا دنیا کا ہم لے لیتے ہیں کچھ یا آخرت کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہی جنت میں گئے، وہاں جا کے تسبیحیں کر رہے ہیں سبحانک اللہ کی، الحمد للہ کی، تو ان کو کیا ملنا ہے؟ سوال واضح کہ دنیا میں تو ہم اس شوق سے سبحان اللہ کر رہے تھے کہ جنت میں ایک درخت لگے. حدیث ہے کہ ایک دفعہ کہنا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، دو کلمے جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتانی فی المیزانی، نام اعمال میں بڑے بھاری ہوں گے، وحبیبتانی الی الرحمانی، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دفعہ پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اب جو جنت میں جا کے یہ سب کچھ کریں گے تو وہاں ان کو کیا ملے گا؟ اب اس کے جواب جی آپ بتائیے، کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کی خوشی، اوکے ٹھیک ہے، اور جی آپ بتائیے. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ شابش جی. آپ دیکھیے کہ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تعریف اپنے دل کی خوشی سے کی تھی، کسی فضیلت کو پانے کے لیے نہیں. کوئی گن گن کے نہیں پڑھتے تھے، کوئی اس کے اندر ان کی لمبی تسبیحاں 500 دانوں کی نہیں تھی، اور اس کے بعد کہتے تھے اب ہم نے تو پے کر دیا، اب اللہ پتہ نہیں یہ کام کب کرتا ہے. عادتاً یہ کام کرتے تھے. دنیا میں ان کا یہ ذکر کرنا اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا، ان کو مزہ آتا تھا، پلیئر کے لیے کرتے تھے. آپ دیکھیے کیا باہر جاتے ہیں، ایک دم آپ کو خوبصورت آسمان دکھتا ہے، اس وقت آپ کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں اس وقت یہ سوچ کے کہیں کہ چلو مجھے نیکی مل جائے میں کہہ دوں. میرا تو خیال ہے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بےچارے اب تھک گئے ہوں گے اس بات میں. آج بھی اسی طرح مجھے درخت دیکھ کے مزہ آتا ہے جیسا شاید پہلی دن دیکھنے میں آیا ہوگا. यानी उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं याद होता कि मैं सवाब के लिए ये जुमले बोल रही हूँ, मेरे दिल की पुकार है। मुझे लगता है मैं नहीं बोलूंगी तो मेरे अंदर घुटन होगी। यानी बंदा है मोमिन, पीछे आयतों की बात हुई, अल्लाह की कायनात पे बात की, कि जब इन चीजों को देखता है तो वो तुम आउट ऑफ लव कह रहा होता है सुभानक अल्लाह। आदत थी उसको, अल्लाह की मोहब्बत थी उसके दिल में, इस तरह की बात करता है। तो यहां अल्लाह ताला ने दुआ के रंग में नहीं बल्कि उनके दिल के जज्बात के इजहार की बात की है, कि जैसे दुनिया में इनको आदत थी वो कोई अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए कहते थे। और देखिए ये मार्फत के दर्जे होते हैं, जिसको अल्लाह ताला के साथ ये ताल्लुक हो जाएगा फिर वो गिने और मिने का नहीं। एक बड़ी प्यारी हदीस आपसे शेयर करती हूँ, शायद उससे ज्यादा आप बात को समझ सकें। हदीस कुदसी है ये, यानी अल्फाज भी अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा मेरी हमदो सना में हर वक्त लगा रहे, यहाँ तक कि इसको अपने मतलब की दुआ मांगने की भी फुर्सत ना रहे, तो मैं इसको तमाम मांगने वालों से बेहतर चीज दूंगा, यानी बिन मांगे इसके सारे काम पूरे कर दूंगा। और इसको आजमा के देख लें, अल्लाह की ये बात के सच्चा होने की तो मैं गवाही दे सकती हूँ। कई मौके ऐसे होते हैं कि या तो बैठ के कुरान पढ़ लें, अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह के दीन का कोई काम कर लें, या दूसरी तरफ यह कि हाथ उठा के दुआ मांगनी शुरू कर दें। यकीन करें कि ईमान है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला ज़्यादा देगा। छोटी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद फ़ायदा हो जाए किसी को। एक माँ है, उसका छोटा सा बच्चा है, कोई बैठ के उसके बच्चे को खिला रहा है, पिला रहा है, बच्चे की हिफाजत कर रहा है, बच्चे को उसके ठीक कर रहा है, बिजली से बचा रहा है, सर्दी से बचा रहा है, यानी बच्चे की हिफाजत कर रहा है कोई भी। अब एक दूसरी औरत है जो उसी औरत से जिसका बच्चा है खेल रहा है, एक औरत उसके बच्चे की हिफाजत कर रही है, और दूसरी एक औरत उसी लेडी या जो भी अमीर औरत है उसको कहती है, बाजी 500 रुपए दे दो, पैसे दे दो, कुछ मांग रही है, बैठ के कहती है उसको, मुझे पैसे दे दो, कपड़े दे दो, पैसे दे दो, कपड़े दे दो। अब आप इमेजिन करके बता सोचिए कि ये खातून जो बेगम साहिबा है ये किसको खुशी से देंगी, जिसने मांगा, या उसको देंगी जो इसके बच्चे की हिफाजत कर रही है? बच्चे की हिफाजत करने वाले को देगी। अब अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। एक वो बंदा है जो मांग रहा है अल्लाह से, और एक है जो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है। युखाफिज़ूना हुदूदल्लाह या हुदूदल्लाह, जो अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको ज्यादा देगा, या उसको देगा जो बैठ के मांग रहा है? और वो दोनों को ही मायूस नहीं करता। इस बेगम साहिबा की तो मजबूरी हो सकती है ना कि उसने एक को ही देना है, या है ही इतना, एक को दूं या आधा दूं। अल्लाह तो सबको दे देता है, लेकिन बात समझ आ जाती है कि जब हम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए लग जाते हैं, हमारा सीखना, हमारा सिखाना, पढ़ना पढ़ाना इस मकसद से होता है ना कि लोगों को अल्लाह का दीन सही समझ आ जाए, गफलत के पर्दे चाक हों, इस दीन के अंदर जो पोल्यूशंस हो गई निकले, तो ईमान है कि अल्लाह बिन मांगे देता है और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। और हमारा तो अल्लाह के साथ गुमान ही है कि जो चीज मांगने से भी नहीं मिलती कभी किसी को, वो बिन मांगे से अल्लाह हमें अता कर दे, क्योंकि मांगने का वक्त ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम का एक अमल आता है सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में, कि जब आपको कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी होती, तो आप क्या कहते हैं? इमेजिन कीजिए, दुख है, बेचैन है, अमूमन हम क्या कहते हैं? लंबे काफले काफिये मिलाते हैं, शेरों में दुआएं पढ़ते हैं। मिसाल देती हूँ मैं बात को सिर्फ समझाने के लिए, कि बच्चा बीमार है, इससे ज़्यादा बेचैनी माँ के लिए तो कोई नहीं हो सकती ना, या बाप है तो उसके पास कुछ है ही नहीं बच्चों को खिलाने के लिए। अब हम क्या दुआ करेंगे? उस चीज़ को बोलेंगे ना कि अल्लाह बच्चे को सेहत दे दे, बच्चे की परेशानी दूर कर दे, दिसाना। और अल्लाह के नबी उस वक़्त क्या हाथ उठा के कहते थे? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। क्या मांगे भाई? एक चीज मांगी, एक दफा भी कहा कि अल्लाह बच्चा बीमार है, बच्चे को सेहत दे दे, फातिमा का पेट भूखा है, उसको खाना दे दे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तारीफ है। सबसे मारूफ कलमा जो आप और हम सब बहुत प्यार और मोहब्बत से मांगते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको लिख के देखें, क्या मांग रहे हैं आप? कुछ नहीं मांग रहे, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, और इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हूँ। اللہ کی ذات کی معرفت اور اپنی بے بسی کا اقرار، کچھ نہیں مانگا آپ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا مانگوں؟ کہتے عائشہ بیٹا مانگ لے، اولاد نہیں ہے بچے مانگ لے۔ چلو بیٹا نہیں، اللہ بیٹیوں ہی دے دے، دو دو مہینے تک چولہا نہیں چلتا، اللہ کھانا دے دے۔ کہا نہیں عائشہ، اگر تجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو مانگ، اللہم انک عفوون، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ کوئی چیز نہیں دکھ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تو کیا مانگا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو جو دے گا میں ہر چیز کا محتاج ہوں، مجھے کچھ نہیں مانگنا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ ولم اقم بدعائی کا رب شقیا، اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی بدبخت نہیں رہا۔ یہ تعلق ہے، ہم نے دعا کو ایک رسمی کلامی چیز بنا کے رکھ دیا۔ جنت میں جا کے وہی کہہ سکیں گے سبحانک اللہم، جن کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی، جو اپنی بڑائیوں کی باتیں نہیں کریں گے، اپنے گن نہیں گاتے رہیں گے ہر وقت، اپنی تعریفیں نہیں کریں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ پکایا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، بلکہ ایسے لوگ جو ہے اللہ کی گن گاتے ہیں۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ، وقت ملاقات جا کے کیا کہیں گے؟ ہائے، بائے، ہاں، عادت ہی نا سلام کی، تو جنت میں جا کے بھی سلام کریں گے۔ ان کا شعار ہی سلام تھا۔ کس کو سلام کہیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے جنتی، فرشتے جنتیوں کو سلام کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہے۔ اسی طرح جنت کے خادم، جنت میں چھوٹے چھوٹے خادم ہیں، جیسے ینگ لڑکے جس کو کہتے ہیں، وہ سلام کریں گے۔ دنیا میں بعض لوگوں کو سلام اتنا بھاری لگتا ہے کہ اس کی جگہ الٹے سیدھے لفظ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شرم آتی ہے سلام کہتے ہوئے، کہتے ہیں مولوی لگتے ہیں، پھر کوئی سلام بھی کریں تو السلام علیکم، یہ پتہ نہیں کیا کیا تھا آپ نے۔ یقین کریں، بعض بڑی ادا سے سلام کرتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا اس کا جواب دے۔ ایسے نہیں لگتا کہ آج ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی؟ اپنے اسلام پہ شرمندہ اور دوسروں کے ہائے بائے پہ فخر ہو رہا ہے۔ اسے ایک کلچر سمجھ آ رہا ہے، آپ کو ایک کردار سمجھ آ رہا ہے کہ جنت میں جانے والا کوئی ایک نیا انسان نہیں بن جائے گا، یہ وہی ہوگا جو اس دنیا میں ہے، جو دنیا کی آتے تھی وہی وہاں ہوگی، یہاں ہائے کہہ رہے تھے وہاں جا کے ہائے نکل جائے منہ سے۔ ہاں، جو یہاں سلام کہتے ہیں وہ وہاں بھی سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری پکار یہ ہوگی کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے۔ سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ یہ کلمہ، جنتیوں کا آخری کلمہ، الحمد للہ، پہنچ گیا، شکر ہے۔ یہ کس کی زبان کی بات ہے الحمد للہ، جس نے زندگی میں الحمد کی ہوگی؟ سو کر اٹھے تو الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، واش روم میں گئے جانے سے پہلے، آئینہ دیکھنے سے پہلے کیا کہا؟ اللہم کما حسن تخلقی فحسن حلوکی۔ باتھ روم کی دعا پڑھ لیں، نکلنے کی دعا پڑھ لیں، الحمد للہ الذی عافانی، ہاں، کسی کو مصیبت میں دیکھا، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تبدیلا، ٹھیک آئی تو الحمد للہ، نماز میں شروع کی نماز تو الحمد للہ، پھر رکوع سے اٹھے تو ربنا ولک الحمد۔ ایسے لگتا ہے کہ جنتیوں کی زبانوں پہ دنیا میں ہی الحمد کے لفظ ہوتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمد للہ، کچھ کھایا ہے الحمد للہ، اب طبیعت کیسی ہے الحمد للہ، ٹھیک سو گئے تھے الحمد للہ، یہ تو گنگا رہے ہیں اللہ کی تعریف کے، اور الحمد تو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جنتیوں کی زبان پر تسبیح اور تحمید، یعنی الحمد کہنا، ایسے الہام کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں تم سانس لیتے ہو۔ مثلا پچھلے ایک گھنٹے میں میں نے اور آپ نے کتنی دفعہ سانس لیا ہمیں یاد ہے؟ کوئی گنا؟ بلا تکلف لیا نا۔ اس طرح جنتی بلا تکلف وہاں سبحان اللہ اور الحمد للہ کہیں گے، اور جس کے دل میں اللہ کی تعریفیں آ جاتی ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں اللہ کی طرف۔ किसी एक ने यहाँ इसकी तफसीर में ये भी कहा कि हो सकता है जन्नत में ये अल्हम्द और सुभानक अल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह जन्नत में उनके दर्जों को बुलंद कर दे। तो बहरहाल हमारे पास इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसा बंदा फिर अल्लाह की तरफ यूं झुकता है कि उसको अपनी ज़ात बड़ी छोटी लगती है। हम अपना ज़रूर जायज़ा लिया करें, अपने जुमलों को देखा करें। इसीलिए अल्लाह ताला फिर अगली आयतों में इंसान को उसकी कुछ कैफियत दिखाता है कि कैसा थुड़दिला इंसान है कि खुशी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और गम भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसको पता ही नहीं कि मेरे हक में बेहतर क्या है और मेरे हक में बुरा क्या है। यहाँ तक तिलावत सुन के फिर इंशाल्लाह।
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين